पृष्ठ संख्या 224। चियांग चियेसरा का साम्यवादियों से अलग होना उस कोशिश को चिन्हित करता था जिसका उद्देश्य क्रांतिकारी क्रिया के एक स्तर पर राष्ट्रीय क्रांति में हुए लाभ को सुदृढ़ करना था। चियांग और कुओमिंतांग ने ऊपरी तौर पर राष्ट्रीय एकता और विभिन्न शक्तियों से मान्यता प्राप्त कर ली तथा प्रशासनिक प्रगति के कार्य को आरंभ कर दिया, जो कि असमान संधियों की समाप्ति के लिए एक अनिवार्य कदम था। 1927 ईस्वी से 1937 ईस्वी तक कुओमिंतांग की सरकार ने नानचिंग में अपनी राजधानी कायम करके चीन पर राज किया। यह चीन में तब तक की सबसे अधिक आधुनिक सरकार थी। नानचिंग सरकार कुओमिंतांग द्वारा दलीय तानाशाही के आधार पर नियंत्रित थी। इसने सुनियात सेन द्वारा सुझाए गए सरकार के पंचभुजी विभाजन का रास्ता अपनाया। सरकार के यह पांच शक्ति विभाग थे: सेना, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, लोक सेवा तथा सेंसर शाखाएं। इनमें से कार्यपालिका, जिसे युवन कहा जाता था, अपने लगभग एक दर्जन मंत्रालयों, जिनमें विदेश मामले, अर्थशास्त्र, संचार, युद्ध इत्यादि शामिल थे, के कारण सबसे अधिक प्रभावी बन गई और इसने बाकी के चारों ओर शक्ति विभागों के महत्व को कम कर दिया। कुओमिंतांग का राजनीतिक दर्शन भी सुनियात सेन की तीन स्तरीय क्रांति, सैनिक सैनिक एकीकरण, राजनीतिक संरक्षण तथा संवैधानिक प्रजातंत्र पर आधारित था। इसका सीधा मतलब यह था कि पहले देश का एकीकरण करने में सेना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और तब तक सत्ता संभालेगी जब तक कि देश की एकता से सारे खतरे न टल जाएं, जिसके बाद एक दलीय असैनिक सरकार देश की बागडोर संभालेगी। यह जरूरी नहीं है कि इस सरकार के सदस्य प्रजा द्वारा ही चुने गए हों। आखिर में पश्चिम जैसी उदार प्रजातांत्रिक व्यवस्था उभर आएगी, जिसकी मुख्य विशेषताएं होंगी बहुदलीय प्रणाली, स्वतंत्र चुनाव, स्वतंत्र न्यायपालिका, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इत्यादि। लेकिन यह सब कागजों में ही रह गया। कुओमिंतांग असल में एक निरंकुश दल था जिसका नेतृत्व सैन्यवादियों के हाथों में था। यह दल अपनी मूलभूत प्रकृति को न बदल सका। केंद्रीय कार्यकारिणी समिति ने सभी शक्तियों को अपने में केंद्रित कर रखा था तथा अंत में सरकार और दल एक ही चीज के दो नाम बनकर रह गए। धीरे धीरे इस दल ने अपने क्रांतिकारी लक्ष्य को भी खो दिया। इसने स्थानीय स्तर पर कार्य करना भी छोड़ दिया तथा श्रमिकों, कृषकों, युवकों और महिलाओं का सामूहिक संगठन करना भी त्याग दिया। नानचिंग के सत्ताधारियों ने तो छात्र आंदोलन तथा सामूहिक कार्यवाहियों जैसी कि प्रदर्शनों, धरनों और जनसभाओं का विरोध करना आरंभ किया। इस प्रकार का रुख अपनाने के कारण इस दल की सदस्यता भी गिरने लगी। अधिकांशतः सरकारी अधिकारी, सेना के सदस्य तथा पुलिस वाले ही इस दल के सदस्य रह गए। आर्थिक विकास के स्तर भी कुओमिंतांग कृषकों के जीवन स्तर में विशेष सुधार उस समय भी न ला पाया जब वह इस बात को प्रफुल्लित हो रहा था। इस दल के पतन का एक प्रमुख कारण यह था कि 1927 से 1937 ईस्वी के बीच के काल में गरीबी एवं पिछड़ापन पहले से भी अधिक बढ़ गया था और उसके बाद दशा और बिगड़ गई थी। नेता और अधिकारी भ्रष्ट होने के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारी से भी मुंह मोड़ चुका था। समाज द्वारा जो थोड़े बहुत साधन जुटाए गए थे वह भी सेना के ऊपर खर्च कर दिए गए। इन सभी के ऊपर राजनीतिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता से वंचित होने के कारण जनता की निराशा कई गुना बढ़ गई। इसकी तुलना में माओ तजतुंग के नेतृत्व में साम्यवादी दल ने कुओमिंतांग की इन सभी त्रुटियों और दोषों का लाभ उठाया तथा प्रजा के दिलों में अपने लिए जगह बनाने में सफलता प्राप्त की। 1937 और 1945 ईस्वी के बीच जापानी आक्रमण के दौरान कुओमिंतांग और चीनी साम्यवादी दल ने एक बार फिर संयुक्त मोर्चा कायम करने का फैसला किया। यह राष्ट्रवाद के लिए किया गया एक समझौता था, लेकिन इस द्वितीय संयुक्त मोर्चे से कुओमिंतांग को कोई लाभ नहीं हुआ। असल में साम्यवादी कट्टर राष्ट्रवादियों के रूप में सामने उभर कर आए। साम्यवादी सेनाओं ने जापानी आक्रमणकर्ताओं की नाक में दम कर दिया। 1945 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की पराजय के तुरंत बाद द्वितीय संयुक्त मोर्चे का अंत हो गया तथा गृह युद्ध का काल शुरू हो गया। गृह युद्ध के इन 4 वर्षों में कुओमिंतांग और भी कमजोर हो गया। अनेकों अराजनैतिक संगठनों तथा निर्गुट लोगों ने साम्यवादियों को समर्थक देना आरंभ कर दिया। अनेकों अराजनैतिक संगठनों तथा निर्गुट लोगों ने साम्यवादियों को समर्थन देना आरंभ कर दिया। कुओमिंतांग सेना के सैनिक भारी संख्या में साम्यवादी सेना में जा मिले। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा चियांग चिएसरा को दी गई मदद से भी कुओमिंतांग की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। राजधानी पेचिंग जब साम्यवादी सेनाओं के हाथ में आ गई तो कुओमिंतांग के वरिष्ठ नेता व सैनिक अधिकारी ताइवान द्वीप में चले गए। यहाँ पर उन्होंने अपनी सरकार को चीन गणराज्य रिपब्लिक ऑफ चाइना का नाम दिया। बाकी का सारा देश 1949 ईस्वी में माओ तैतुंग के नेतृत्व में साम्यवादी दल के अधीन आ गया तथा जनवादी गणराज्य चीन पीपुल ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना कहलाने लगा। कुओमिंतांग के पतन तथा दोबारा उसके सत्ता प्राप्त न कर पाने के कारण बिल्कुल अस्पष्ट है। यह दल अपने सैनिक नेताओं पर काफी हद तक आश्रित था। एक असैनिक उदार तथा प्रजातांत्रिक दल अपने एक सशस्त्र भाग के साथ नहीं उभर सकता। यह भी सही है कि चीन की राजनीतिक दशा ऐसी थी जिसमें उदार दलों की उत्पत्ति एवं विकास पूर्णतः संभव ही नहीं था। चीनी समाज के गोपनीय तौर तरीके हमेशा उसके साथ संलग्न रहे। कुओमिंतांग के पतन का कारण उसके मुख्य नेता सुनियात सेन की अकस्मात मृत्यु को भी माना जाता है। सुन इस दल के निर्विरोध नेता थे और सभी सदस्य उसके प्रति काफी श्रद्धा रखते थे। यदि सुन उसके प्रति मैत्रीपूर्वक रवैया न अपनाते तो शायद चीनी साम्यवादी दल भी स्वतंत्र रूप से विकसित न हो पाता। सुन का इस प्रकार का राजनीतिक दर्शन चीन के बुद्धिजीवी वर्ग को भी स्वीकार था। सुन की मृत्यु के बाद चियांग ने दल की बागडोर संभाली, पर उनका व्यक्तित्व सुन की तुलना में काफी निचले स्तर का था। चियांग मुख्यतः एक सैन्यवादी थे, तानाशाह, प्रजातंत्र विरोधी तथा अपने विरोधियों के प्रति कट्टरता का रुख अपनाने वाले। 1927 ईस्वी में इनके द्वारा करवाया गया साम्यवादियों का कत्लेआम आधुनिक इतिहास की एक भयानक घटना है। चियांग का न तो अपना कोई विशेष राजनीतिक दर्शन ही था और न ही वह सुन यात सेन के दर्शन को लागू कर पाए। कुओमिंतांग भ्रष्ट तथा अप्रजातांत्रिक भी बन गया। जिन्हें भी इस दल में नेता बनने का अवसर मिला वहीं अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगे। रिश्वतखोरी, पक्षपात तथा भाई भतीजावाद जैसी अन्य बुराइयां दल के मुख्य लक्षण बन चुकी थी। आम जनता के दुखों की कोई सुनवाई नहीं थी। कुछ परिवार इस संगठन में इतने शक्तिशाली बन चुके थे कि उन्होंने भ्रष्टाचार की हद कर दी। जब इस दल का पुनर्गठन हुआ था तब अनेकों बुद्धिजीवी भी इस दल में शामिल हुए, लेकिन 1940 ईस्वी के बाद इस दल की सदस्यता गिरनी आरंभ हो गई। सम्मानित व्यक्तियों ने तो अब इस दल में शामिल होना अपना अपमान समझा। धीरे धीरे दल की विचारधारा को भुलाकर इस संस्था पर जनता विरोधी तथा बेईमान तत्वों ने कब्जा कर लिया। जैसा कि ऊपर कहा गया है, कुओमिंतांग के शासनकाल में चीन की आर्थिक दशा बिल्कुल बिगड़ गई। कीमतों में बढ़ोतरी तथा मुद्रा स्फीति इस हद तक बढ़ गई कि अच्छी आय वाले परिवारों के लिए भी गुजारा करना कठिन हो गया। गरीबों की दशा तो और भी दयनीय हो गई। शिशु हत्या, वेश्यावृत्ति तथा कत्ल जैसी सामाजिक कुरीतियां आम हो गई थी। दल के कई नेता न केवल गलत उपायों से धन कमाते थे बल्कि बड़े ऐशो आराम का जीवन व्यतीत करते थे। औद्योगिकरण इतनी धीमी गति से हो रहा था कि बेरोजगारी की समस्या निरंतर बढ़ रही थी। कृषक इतने कंगाल हो गए थे कि वह खेती के लिए अधिक धन नहीं जुटा पाते थे। समाज कल्याण के कार्यों, स्वास्थ्य तथा शिक्षा की ओर भी ध्यान नहीं दिया गया। हर प्रकार से चीन की अर्थव्यवस्था पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुकी थी। साम्यवादी दल भी कुओमिंतांग के पतन का कारण बना। जिस तरह की परिस्थितियां चीन में उस समय थी उनमें साम्यवादी दल कुओमिंतांग से बेहतर विकल्प सिद्ध हुआ। साम्यवादी दल के नेता अपने बलिदान एवं लगन के कारण अधिक लोकप्रिय बन गए। मार्क्सवाद, लेनिनवाद की विचारधारा ने भी निर्धन जनता एवं मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों को अपनी ओर आकर्षित किया। संगठनात्मक स्तर पर भी साम्यवादी दल कुओमिंतांग से अधिक अनुशासित था। साम्यवादी दल की सेना भी कृषकों के बीच अत्यंत लोकप्रिय बन गई, विशेषकर तब जब जापानी आक्रमण के दौरान केवल उसी ने कृषकों की रक्षा का बीड़ा उठाया। विशेषकर तब जब जापानी आक्रमण के दौरान केवल उसी ने कृषकों की रक्षा का बीड़ा उठाया। चीनी साम्यवादी दल ने अपनी देशभक्ति को जापानी आक्रमणकर्ताओं का डटकर मुकाबला करके निसंदेह सिद्ध कर दिया। दिन प्रतिदिन अधिक से अधिक लोग इस दल में शामिल होने लगे और अनेकों ऐसे लोग भी इस दल के हमदर्द बन गए जो खुद मार्क्सवादी लेनिनवादी नहीं थे। इन लोगों ने समझा कि देश का भविष्य साम्यवादियों के हाथों में सुरक्षित था। गृह युद्ध के अंत के करीब जब कुओमिंतांग की सैनिक शक्ति काफ़ी छिन्न हो चुकी थी तब इस दल के कई मुख्य नेता तथा कार्यकर्ताओं ने इसे छोड़कर साम्यवादी दल में जा मिले। इसलिए यह कहना उचित होगा कि साम्यवादी दल कुओमिंतांग की तुलना में बेहतर विकल्प था। हालांकि अभी भी कुओमिंतांग ताइवान में सत्तारूढ़ है, लेकिन यह दल साम्यवादी दल की तुलना में इतना शक्तिशाली नहीं है। वैसे तो कुओमिंतांग सारे चीन को फिर से साम्यवादियों से वापस लेकर अपना राज्य कायम करना चाहता था, परंतु ऐसा होगा यह संभव नहीं लगता।